अध्याय 16 बच्चों का नैतिक विकास। आज हमारे सामने अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं खड़ी हैं। आतंक, चोरी, डकैती, मिथ्याचरण, लालच, राग, द्वेष, नशाखोरी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण आदि के कारण संपूर्ण ढांचा ही अस्त व्यस्त होकर बिखर रहा है। इन सब का कारण यही कहा जा सकता है कि बच्चों की देख रेख ठीक से नहीं की जा रही है। उनके सही विकास पर न समाज ध्यान दे रहा है न परिवार। जिस वातावरण के साचे में बच्चों को ढाला जा रहा है वह साचा ही खराब हो चुका है। एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चे का केवल ज्ञानात्मक विकास ही नहीं करना है, वरन उसका संपूर्ण विकास करना है, जिससे कि उसका चारित्रिक और नैतिक विकास भी सम्मिलित है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नैतिक रूप से विकसित है तो नैतिक परिपक्वता की धारणा की पूर्व कल्पना हमारे मन में होती है। नैतिक विकास के 3 उपागम, मनोविश्लेषिक उपागम, अधिगम सिद्धांत मूलक उपागम, ज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण, इन 3 उपागमों का विवेचना इस प्रकार किया गया है। 1 मनोविश्लेषिक उपागम। मनोविश्लेषिक उपागम के अनुसार, जैसा कि फ्रायड महोदय ने स्मारकी कार्य से स्पष्ट है, नैतिकता अभ्यंतरणीकरण की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक मानदंडों या आदर्शों के अनुकरण का नाम है। बच्चे में नैतिकता की प्राप्ति उसके अंदर परा अहम का विकास वयस्कों, विशेषकर माता पिता के आदेशकों के मानदंडों के अभ्यांतरीकरण द्वारा होती है। ये नैतिक आदेशक ईद काम तत्व के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ये अंतःकरण के रूप में भी काम करते हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःकरण बच्चे को सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध कार्य करने से रोकते हैं। अंतःकरण का इस पर निर्भर करता है कि बच्चों को माता पिता के प्रति लगाव मिलता है। यह लगाव गहरा है तो यह अपने अंदर विद्यमान आक्रामक भावों अथवा माता पिता द्वारा किसी निंदनीय व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह डरता है कि वह कहीं से नाराज न हो जाए। इस प्रकार वह अपने आक्रामक प्रवृत्तियों का अभ्यांतरीकरण कर लेता है। वे बच्चे जिनका अपने माता पिता के साथ अधिक लगाव नहीं होता, अपने मनोभावों की खुलकर अभिव्यक्ति करते हैं, अन्यथा अन्य व्यक्तियों पर अपने द्वेष को प्रकट करते हैं। ऐसे बच्चों का अंतःकरण दृढ़ नहीं होता। परा अहम समाज की अपेक्षित सकारात्मक मानक प्रदान करता है। यह माता पिता अथवा समाज की मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नैतिक आचरण के संबद्ध दिशा प्रदान करता है। अंतःकरण जब स्वयं द्वारा निर्धारित मानदंडों तक नहीं पहुंच पाता तो पाप अथवा अपराध की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। यही कारण है कि कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार बालक जब सामाजिक मान्यताओं का तनिक उल्लंघन कर बैठता है तो समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार करने के लिए तनिक सोचने पर भी स्वयं को अपराधी समझने लगता है। इस प्रकार ऐसे बच्चे प्रायः दिखाई देते हैं जो छोटी गलती करने के लिए या दूसरे की बुराई करने की बात सोचने मात्र से अपने को दंडनीय समझने लगते हैं। इस पूरे सिद्धांत में कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि माता पिता द्वारा बच्चे को मिला हुआ अधिक प्रेम संबंध नैतिक विकास में बहुत सहायक है। 2 अधिगम सिद्धांत मूलक उपागम। यह मतवादियों का कहना है कि कौशलों और आदतों के विकास की ही तरह नैतिक व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है। इस नैतिक व्यवहार को बच्चे अपने वातावरण अथवा परिवेश से सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांतवादी 3 प्रकार के तंत्रों के विषय में सोचते हैं जिनके द्वारा नैतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। वे इस प्रकार हैं: प्रबलन तथा पुरस्कार, दंड अथवा दंड की धमकी, प्रतिरूपण या अनुकरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सक्रिय अनुकूलन, इसके अनुसार व्यवहार को प्रबलन प्रविधियों के द्वारा मनोवांछित व्यवहार दिया जा सकता है। किसी व्यवहार को यदि भली प्रकार से प्रबलित किया जाए अथवा पुरस्कृत किया जाए तो भविष्य में उस वांछित अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों को सामाजिक रूप से वांछित अथवा नैतिक रूप में शुद्ध व्यवहार को, जैसे सच बोलना, दूसरों की सहायता करना, विनम्र होना, दूसरों का ख्याल रखना आदि स्किनर की प्रविधियों द्वारा सिखाया जा सकता है। जो व्यवहार उसने सीख लिया है उसे संशोधित किया जा सकता है। जिस प्रकार वांछनीय व्यवहार की प्रशंसा, मुस्कुराहट, समर्थन द्वारा बढ़ाया जा सकता है या व्यवहारों का संवर्धन किया जा सकता है, उसी प्रकार से अवांछनीय व्यवहार, भर्त्सना, अस्वीकार या सुविधाओं को रोककर छुड़ाए जा सकते हैं। अवांछनीय व्यवहार इस विधि से नहीं भी छुड़ाए जा सकते अथवा उनका उलट असर भी हो सकता है। आइसेंक का मत है कि किसी भी नैतिक मूल्य का अधिगम किसी अधिगम सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। वे अंतःकरण के निर्माण की व्याख्या अनुबंधित अनुक्रिया के माध्यम से देते हैं। कोई बच्चा अगर किसी वर्जित कार्य को करने की चेष्टा करता है तो चिंता के अनुबंधित मनोभावों उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अधिगम सिद्धांतवादियों के अनुबंधन संबंधी प्रयोग पशुओं पर किए गए, लेकिन उनका सामान्यीकरण उन्होंने मनुष्यों पर किया। सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों के अनुसार बालक केवल बड़ों के अनुदेशों द्वारा ही नहीं सीखते, बल्कि बड़ों के कार्य अथवा व्यवहार करते हुए देखकर भी सीखते हैं। दूरदर्शन पर व्यवहारों को मूर्त रूप देखकर भी वे सीखते हैं। वेंडुरा ने बच्चों के व्यवहार पर अवलोकनात्मक अधिगम के प्रभाव को दर्शाया है। पुस्तकें भी बच्चों को इसी प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। बच्चे जिनको पसंद करते हैं वे केवल उन्हीं का अनुकरण करते हैं। अनुकरण के द्वारा बच्चों पर पुरस्कार और दंड का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बाउंड्रा तथा उनके साथियों ने एक प्रयोग किया। उन लोगों ने कुछ बच्चों को 4 समूहों में विभाजित किया। प्रथम समूह ने फिल्म देखा जिसे आक्रामक व्यवहार करने के कारण दंड दिया गया था। दूसरे समूह ने फिल्म प्रतिरूप को देखा जिसमें आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया गया था। एक नियंत्रण समूह को एक अत्यधिक नियंत्रण सक्रिय परंतु अनाक्रामक प्रतिरूप दिखाया गया और एक अन्य नियंत्रण समूह को कोई भी प्रतिरूप नहीं दिखाया गया। बाद में बच्चों जब मैदान में खेल रहे थे तो इनका प्रेक्षण किया गया। जिस समूह के बच्चों ने आक्रामक प्रतिरूप को पुरस्कृत होते देखा था उन्होंने अन्य किसी भी समूह के बालकों की अपेक्षा आक्रामक तथा विद्वेषपूर्ण व्यवहार में अधिक आसक्ति दिखाई। प्रयोग के ये परिणाम परानुभूति के विकास के अनुकूल हैं। छोटे बच्चों दूसरों की तुलना में क्रीड़ा खेल नाटक या फिल्म देखते समय अधिक परानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। निष्कर्ष यह रहा कि परानुभूति की व्यक्ति के दैनिक व्यवहार और आचरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। परानुभूति का अथवा दूसरों के सुख दुख की अनुभूति का बच्चों के विकास करते समय बच्चों में अपेक्षित मनोभावों और अभिवृत्तियां उत्पन्न करने में हम इनकी सहायता कर सकते हैं। जो बच्चों को अच्छे आचरण दे सकती हैं, नैतिकता अनैतिक कार्यों को रोका जा सकता है। एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों को उनके अवांछित व्यवहार रोकने के लिए उन्हें ऐसा व्यवहार के लिए दंडित हुए प्रतिरूप को दिखाना ही पर्याप्त है। 3 ज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण। गिस्सल लिखते हैं, नैतिक शिक्षा एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रस्फुटन बच्चों की बढ़ती आयु के साथ साथ होता है। उन्होंने नैतिक प्रशिक्षण पर बल दिया है। उनके अनुसार नैतिक आचरण की 3 अवस्थाएं हैं। 1 सत्ता का अनुसरण करना, वयस्कों के अनुदेशन तथा आदेशों का पालन करना। सत्ता प्रतिभा की अनुपस्थिति में भी नियमों की कठोरता का पालन से किया जाता है। यह अवस्था ऐसी नैतिकता को बताती है जो स्वायत्त होती है। इन्होंने पियाजे और कोहल वर्ग से भिन्न बच्चों की विचार प्रक्रियाओं की प्रकृति की छानबीन नहीं किया जिससे ज्ञात हो सके कि अवस्था विशेष में बच्चों का आचरण जैसा है वह ऐसा क्यों है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने में इन्होंने 2 लोगों से सहायता ली, दुर्खिम कांट। दुर्खिम कहते हैं, हम नैतिक प्राणी केवल इसलिए हैं क्योंकि हम पहले सामाजिक प्राणी हैं। पियाजे कांट के आधार पर कहते हैं, बच्चे किसी अवांछित व्यवहार से इसलिए बच पाते हैं क्योंकि उन्हें उन व्यक्तियों द्वारा निंदा या अस्वीकृति का डर है जिनको वे महत्वपूर्ण समझते हैं। यह भय भी है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी न जाए। यह रूढ़िगत नैतिकता है, लेकिन जब व्यक्ति संकल्प स्वायत्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उनका व्यवहार तथा आचरण सहज हो सकता है। उनका व्यवहार निर्देशन उनके अपने नैतिक कारणों के द्वारा ही होती है। बच्चों के नैतिक निर्णयन के लक्षणों को जानने के लिए पियाजे ने 3 क्षेत्रों का चुनाव किया, बच्चों के नियमों के प्रति अभिवृत्ति, उनकी औचित्य न्याय संगति और निष्पक्षता का मूल्यांकन, उनका उचित और अनुचित निर्णयन। अध्ययनों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि नैतिक निर्णयन पुरस्कार दंड या अनुकरण द्वारा निर्धारित अथवा निश्चित नहीं होता। उन्हें यह तो एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया है जो क्रमिक ज्ञानात्मक पुनः रचना के माध्यम से होती रहती है। पहले पियाजे ने कहा, नैतिकता नियमों की एक व्यवस्था में पाई जाती है और इसका सार उस सम्मान के द्वारा परखा जा सकता है व्यक्ति जिसे इन नियमों के प्रति प्राप्त करता है। पियाजे ने सिद्ध किया कि बहुत से छोटे बच्चों के लिए नियमों का कोई अर्थ नहीं। 6-7 वर्ष की आयु में नियमों को निश्चित और अपरिवर्तनीय समझते हैं। यह परायत्तता की अवस्था है। इस अवस्था पर बाहर से निर्धारित नियमों के अनुसार चलना निश्चित अविवाद्य होता है। अगली अवस्था में यह सोचना शुरू कर देते हैं कि खेल के नियम खेल के व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। खिलाड़ियों की सहमति के सहयोग से इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी समय स्वायत्तता उभरने लगती है। 11-12 वर्ष में वह समझ लेता है कि नियम किस प्रकार बनाए जाते हैं। बच्चे में स्वायत्तता बढ़ती जाती है। इसका कारण है दूसरों के साथ बढ़ती उसकी मित्रता की भावना। वह दूसरों का सहयोग करना सीख जाता है और सहयोग करने लगता है। यहाँ डाउने और कैली के विचारों से अवगत हो जाना आवश्यक है। वे लिखते हैं, किसी कम उम्र के बच्चों ने यदि यह अनुभव किया कि नियमों का उपागम कोई आप्त व्यक्ति अथॉरिटी है, तो नियमों के प्रति उनका आदर आपसी न होकर एक पक्षी होगा। ऐसा देखा गया है, बच्चे जब हम उम्री बच्चों के साथ खेलते हैं समय नैतिक नियमों की खोज करते हैं, तो यहीं से उनमें स्वायत्तता का विकास होने लगता है। नैतिक निर्णय के संबंध में पियाजे की खोज। पियाजे की यह खोज बच्चों के उचित और अनुचित निर्णय के संबंध में है। उनका कहना है, आरंभिक आयु में बच्चा किसी चीज को उचित केवल इस आधार पर कहता है कि वह वयस्क उसका समर्थन करते हैं, अनुचित इस कारण कि लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। यह परायत्तता से स्वायत्तता की अवस्था है जिस पर बालक कार्यों का निर्णय करते इसके भौतिक प्रतिफलों के आधार पर करते हैं, न कि उसके पीछे छिपे अभिप्राय से। नैतिक निर्णय निर्माण की इस अवस्था को पियाजे नैतिक यथार्थवाद करता है। उसमें अपने और दूसरों के भावों का अंतर करना बहुत कम आता है। वह परिस्थितियों को अपनी दृष्टि से देखता है। वह यह विचार नहीं करता कि वैसे ही दूसरों के भी दृष्टिकोण होंगे। जब वह आत्म केंद्रियता से बाहर आता है तो दूसरों के बारे में सोचने लगता है। बड़ा बालक यह सोचेगा कि चोरी करना पाप है, पर दूसरों के हित होने की दशा में वह चोरी करना कठिन ही समझता है। तीसरी दशा में बच्चा दुनिया को दूसरों की दृष्टि से देखना आरंभ कर देता है। वह तर्कसंगत नैतिकता में पदार्पण कर देता है। परंपरागत नैतिकता के बंधन से वह दूर हो जाता है। इस प्रकार पियाजे दो प्रकार की नैतिकता का वर्णन करता है, परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता, तर्कड़ापरक नैतिकता। रूढ़िगत में वे बड़ों के आदेशों के अनुसार चलते हैं। उन्हें डर होता है कि झूठ बोलने पर वे पकड़े जाएंगे। इन नियमों की विवेचना और विश्लेषण के बाद अपने नियमों का निर्माण करते हैं। उन्हें किसी का भय नहीं होता। वह किसी में वे तर्क परायण हो जाते हैं। तर्क परायण नैतिकता में दूसरों के प्रति सद्भाव होता है। पियाजे नैतिक अवधारणा को विकासात्मक और पुनः रचना प्रक्रिया समझता है। वह ध्यान देने की बात है कि पियाजे बच्चा एक से दूसरी अवस्था की तरफ एक क्रम में हो जाता है, लेकिन वह उन दशाओं की बात नहीं कर सकता। वह यह नहीं दर्शाता कि बच्चे की प्रगति परायत्तता की स्थिति दशा पर ही क्यों अवरुद्ध हो जाती है और वह स्वायत्तता की ओर बढ़ नहीं पाता। उसके नियमों के अनुसार माता पिता और अध्यापक किसी तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, वह स्पष्ट नहीं होता। नैतिकता के विकास में कोहल वर्ग का योगदान। कोहल वर्ग ने नैतिकता की थ्योरी द्वारा बच्चों में ईमानदारी, सहयोग आदि गुणों विकसित किए जा सकते हैं। चोरी, बेईमानी, धोखा आदि शब्दों की एक पक्षी परिभाषा करना कठिन है। यह सब अनैतिक कार्य किन्हीं परिस्थितियों में नैतिक भी हो सकते हैं। किसी भी कार्य को उचित या अनुचित ठहराना बड़ा ही कठिन है। कभी कभी झूठ बोलना भी आवश्यक हो जाता है और झूठ को नैतिक कहा जा सकता है। डॉक्टर अपने मरीज से यह कभी नहीं कह सकता कि वह जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। यहाँ पर डॉक्टर सही बोल दे तो बीमारी व्यक्ति जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कभी कभी बच्चों से सत्य को छिपाकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः परिस्थिति के अनुसार झूठ और चोरी आदि नैतिक व्यवहार भी कहे जा सकते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं। एक साधक सापेक्षवादी अवस्थिति। यह पूर्व नैतिक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा दंड के प्रेरक के अनुसार कार्य करता है। वह माता पिता के दंड के भय के कारण कार्य करता है। वह समय से स्कूल से घर आता है। डर के बाहर अधिक समय नहीं देता क्योंकि उस पर मार पड़ सकती है। वह उसे डांट कर डांट का डर रहता है। यदि बच्चा गलत काम करेगा तो माँ बाप नाराज हो सकते हैं। दो, साधक सापेक्षवादी अवस्थिति। इसके अनुसार उचित तथा अनुचित की कसौटी यह है कि क्या उस कार्य विशेष से बच्चे की आवश्यकताएं पूरी होती हैं अथवा नहीं। मानव व्यवहार बाजार व्यवहार की भांति समझे जाते हैं, यद्यपि व्यवहार में न्याय, संभाव्यता, निष्पक्षता, पारस्परिकता, बराबरी की साझेदारी आदि तत्व होते हैं। उसने मेरी सहायता की, अतः मैं उसकी सहायता करूंगा। इस तरह की पारस्परिकता में कोई नैतिक तत्व जैसे निष्ठा, कृतज्ञता अथवा औचित्य नहीं होती। यदि आप मेरे काम आए तो हो सकता है मैं भी आपके काम आऊं। 3, अच्छा लड़का सुशील लड़की अवस्थिति। भद्र या अच्छा व्यवहार उसे कहते हैं जिससे कि दूसरे प्रसन्न होते हैं। रूढ़िगत व्यवहार से यह काफी मिलता जुलता है। व्यवहार अपने आशय से समझा जाता है। व्यक्ति सुशील बनकर ही अच्छा समझा जा सकता है। कानून और व्यवस्था स्थिति। इस व्यवस्था में सत्ता निर्धारित नियमों तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की ओर झुकाव होता है। उचित व्यवहार का अर्थ अपना कर्तव्य पालन होता है। सत्ता के प्रति आदर और दी गई व्यवस्था बनाए रखता है। 7, 5, सामाजिक अनुबंध साधन विधि स्थिति। यह अवस्था उपयोगितावादी विचार पर आधारित है। उचित कार्यों की परिभाषा सामान्य व्यक्ति में अधिकारों तथा मानदंडों के अनुसार दी जाती है। ऐसे अधिकार और मानदंड जिनके जांच विवेचनात्मक विधि से की गई है और वे पूर्ण समाज द्वारा समर्पित हैं। 6, सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय सिद्धांत अवस्थिति। उचित अंतःकरण के निर्माण द्वारा स्वचयित नीति परक सिद्धांतों के अनुसार जो तर्कणा दृष्टि से व्यापक व सुसंगत हो परिभाषित किया जाता है। ये सिद्धांत अमूर्त एवं नीति परक होते हैं। वे 10 धर्मोदेशों की भांति अन्य धार्मिक संस्थाओं जैसे कार्य समाज, जैन धर्म आदि द्वारा प्रतिपादित नियमों की तरह मूर्त नैतिक नियम नहीं होते। वे न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं जिनमें मानव अधिकारों की पारस्परिकता और व्यक्ति के रूप में मनुष्यों के गौरव के प्रति सम्मान भावना महत्वपूर्ण होती है। यह है से चाहिए की स्थिति है। अवस्था 1 पर जीवन का महत्व संबंधी व्यक्ति की शक्ति अथवा आधिपत्य के संदर्भ में आका जाता है, जबकि अवस्था 2 पर किसी व्यक्ति या दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में कोई व्यक्ति कितना उपयोगी है अथवा हो सकता है इससे उसके जीवन का मूल्य जाना जाता है अथवा उस व्यक्ति के दूसरों के साथ कैसे संबंध है और वे उसे कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हैं। अवस्था 4 पर इसका आधार सामाजिक या धार्मिक कानून है। केवल आर्थिक 5 और 6 पर केवल अवस्था 5 और 6 पर ही प्रत्येक जीवन को अपने आप में बिना किसी अन्य विचार के महत्वपूर्ण समझा जाता है। नैतिक निर्णय, नैतिक कर्म। नैतिक निर्णय के लिए युक्तिसंगत तर्क आवश्यक है। नैतिक कर्म के लिए नैतिक सिद्धांत आवश्यक है। सिद्धांतों के अनुसार कोई तर्क कर सकता है लेकिन जीवन में इन नैतिक सिद्धांतों का पालन भी करना होता है हो यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के नैतिक कर्म आशय, उद्देश्य, मनोभाव और संकल्प ही शक्ति पर निर्भर है। प्रोफेसर संगम लाल पांडे का कहना है, नैतिक निर्णय का एक आदर्श होता है। जैसे यदि हम कहते हैं कि तुलसीदास सत्यवादी थे तो सत्यवादिता का आदर्श हमारे मन में है। जबकि हम किसी व्यक्ति के कार्य को इस आदर्श के अनुकूल पाते हैं तो हम उसे सत्यवादी कह देते हैं। नैतिक निर्णय देते समय निर्णायक केवल नैतिक निर्णय ही नहीं देता, केवल मनोवैज्ञानिक भावों के अनुसार अनुभव ही नहीं करता और उन पर आलोचना ही नहीं देता, वरन वह सत आदर्श की प्रशंसा करते हुए उनको प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्त करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मनोभाव विनोवा भावे संत हैं तो हमारे अंदर कुछ सद्भाव उठते हैं जो विनोवा भावे से संबंधित है। हम इनके भावों और कारण स्वरूप विनोवा भावे के कार्यों की तुलना एक आदर्श से करते हैं और अंततः हम जिस संतपन के आदर्श की आलोचना करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार नैतिक निर्णय में ये 3 तत्व पाए जाते हैं, भाव तत्व, ज्ञान तत्व, इच्छा तत्व। नैतिक निर्णय हमारे नैतिक भाव, नैतिक ज्ञान और नैतिक संकल्प को व्यक्त करते हैं। नैतिक निर्णय के आदर्श से किसी व्यक्ति को सृष्टि नहीं कह सकते। किसी को अच्छा कहते हैं तो कि सभी लोगों की आवाज है, केवल मेरे और अन्य के कहने से वह अच्छा नहीं है। हम जब उसे अच्छा कहते हैं तो उसकी अच्छाई को ग्रहण करके उसी के अनुसार कार्य भी करना चाहते हैं। जब हम गांधी और हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहते हैं तो हमारा निर्णय अन्य बातों के अलावा यह भी है कि हमको सत्यवादी होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य रहना वैवाहिक जीवन से अच्छा है तो हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमको वैवाहिक होने की अपेक्षा ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। नैतिक निर्णय का विषय नैतिक कर्म है। ऐच्छिक कर्म के तीन तत्व हैं, उसका स्रोत या हेतु, उसकी प्रक्रिया या कार्य साधन, उसका फल या परिणाम। उद्देश्य का एक विभाजन साध्य और साधन में होता है। सभी साध्य और सभी साधन अलग अलग नैतिक निर्णय के विषय हैं। किसी साध्य के किसी साधन को उचित या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और न किसी साधन से किसी साध्य को ही उचित या अनुचित कहा जा सकता है।